अरे जन्म तो पीछे हुआ, उसके मैया और बाप पहले मिले। इसलिए एक प्रमाण क्या है, उसे गुरु जी ने पूछा कि हमारी मैया कहती है, हाँ ऐसे ही आओ रास्ते पर, मैया की बात मानो। वेद शास्त्र जितने हैं, हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं, भगवत सत्य हैं, इनको सीता माता के रूप में मानो, मैया है। इसलिए मैया के बात तो विश्वास करना होगा। हाँ ऐसी भी बात है, मैया झूठ भी बोल सकती है, किंतु शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान है, भगवान जरूर है। इसलिए भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। जब उन्होंने कहा जहां पर भी कोई भगवान का नाम लेता हो, एक भी नाम दे दिया, यदि शुद्ध रूप में नाम नहीं हुआ तो कोई हानि नहीं, वो अपना फल देगा। जैसे कोई आदमी अनजान में एक छोटा सा बच्चा आग में हाथ देगा तो जलेगा कि नहीं हाथ, ये तो वस्तु का गुण है। पानी में कोई उतरेगा और हजार बार चेष्टा करे कि मैं भींगू नहीं, पानी में उतरेगा तो भीगेगा कि नहीं भीगेगा, और समय भीगेगा, ये तो वस्तु का गुण है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में जो शक्ति है, आप चाहे ज्ञान में करें अनजान में करें, किंतु उसका फल जरूर होगा। इस चीज को समझिए, हम उसको नहीं देखते हैं किंतु वो तो देखता है ना, उसकी कृपा हमारे ऊपर, हम तो उसी की संतान में है संतान। इसलिए भगवान का नाम करने का फल जैसे भी करो जरूर, किंतु हाँ जरा श्रद्धा से करेगा जल्दी उसका फल होगा, और यदि श्रद्धा के साथ नहीं करेगा थोड़ा सा विलंब होगा। यही नाम ही तुमको श्रद्धा ला देगा, वैष्णव से मिला देगा, गुरु से मिला देगा, और अंत में भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए नाम में जरूर विश्वास। इसके बाद में उनकी बात सुन करके उनके दूत लोग संतुष्ट हो गए, और इधर में अजामिल को विष्णु के दूतों ने, विष्णु के दूत जब जाने लगे, अजामिल उनसे बातचीत करना चाहा, उनके चरणों में गिरना चाहा, किंतु झट अंतर ध्यान को करके चले, वो तो मर रहा था किंतु मृत्यु से बच गया, वो उठा। अरे हो, आज मैंने अजीब देखी, मैं तो मर गया था किंतु भगवान के दूतों ने हमारी रक्षा की। अब वो जो नारायण के दूत है, यदि मैंने बच्चे का नाम नारायण रखा और जैसे तैसे कहा तो इसका तो ये फल हुआ कि मैं मृत्यु से बच गया, और मैं इसी नाम को अब जाकर क्यों करूंगा। इसलिए वहां से चला गया, हरिद्वार में गया, गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी के किनारे एक पर्णकुटी बनाई, और वहीं पर प्रतिदिन तीन बार और नारायण नमो नारायण आय नमो नारायण आय। कुछ दिनों के बाद में वही चारों दूत उनके सामने आए सोने का विमान लेकर, बोले जी आप इसमें बैठिए। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा तो पीछे, आप पहले बतलाइए, पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहा, आपने बात नहीं किया, अब बातचीत कर रहे हैं। कहे उस समय तुम्हारे अंदर में जन्म मृत्यु से तो तुम मुक्त हो गया था, किंतु तुमको आत्म तत्व का भगवत तत्व का ज्ञान नहीं था। अब तुमको इतने दिन नाम करने से तुम्हारे अंदर में ये संसार क्या चीज है इसका ज्ञान हुआ है, ये मरणशील ध्वंसशील वस्तु है, भगवान सबके प्रभु है, मैं उनका दास हूं, आत्मा हूं, इसलिए तुम्हारा शरीर अब हट गया, शरीर पड़ा रहा, उसमें से आत्मा दिव्य निकली, और वो दिव्यात्मा को शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि देकर के सुंदर रूप और सिंहासन से बैठा कर, अब तुम पवित्र हो गया। यह है अजामिल का शरीर। इसे हम लोगों को सुनना और समझना चाहिए, और आज ही से, कल से नहीं। आप लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज ही से आरंभ करें, कल सवेरे से कुछ करो ना मत करो, पूजा हो न हो, कलयुग में पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ यही है। इसलिए भगवान के नाम के साथ में पूजा यदि की जाएगा तो उसका बहुत फल होता है। इसलिए भगवान का नाम किसी स्थिति में सभी आदमी कर सकते हैं, स्नान करो न करो, पवित्र हो अपवित्र हो, एक पैसा कौड़ी लगता नहीं, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, मन को इसमें शांत करने की भी जरूरत नहीं। आप जोर से थोड़ा सा नाम करेंगे ना तो अपने आप कान भी वही सुनेगा, मन भी वहीं पर चला जाएगा, अपने आप केंद्रित होकर के एकदम शांत हो जाएगा, और ध्यान लगाओ तरह तरह की चीजें मन में आए, कभी भी शांति नहीं, अशांत चित्त रहेगा, वो उसको एक मुखी नहीं कर सकते हैं, समाधि नहीं लग सकती, एक आदमी समाधि में भी बैठा है किंतु हरे कृष्ण जरा जोर से बोलो बस उसकी समाधि खुल जाएगी। इसलिए नाम बलवान है, कलयुग केवल नाम आधार। अभी हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम अव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। हरे नाम एव, हरि नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही केवल मात्र, केवल मात्र और केवल मात्र कलयुग के लिए गति है, ऐसा समझिए। इसलिए कोई कुछ करो तो ठीक है, न करो तभी हरि नाम जरूर करो। कल ही से आप लोग आरंभ करते हैं, आप लोगों का जीवन सुखमय और शांतिमय। मैं कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, मैं यही आप लोगों से भिक्षा चाहता हूं कि आप लोग अपने कल्याण के लिए ही इस नाम को करें। कलयुग में इसको कहते हैं महामंत्र, मंत्र उसको कहते हैं जो मन से होता है, यदि उच्चारण हो गया तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ओम नमो नारायण यदि जोर से करेंगे, गायत्री मंत्र यदि जोर से करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण मत करो, मन ही मन करो, किंतु ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जोर से करो, धीरे करो, समाधि में करो, खूब उच्च स्वर से करो, ताल लय मान के साथ में, ढोलक बजीरा हारमोनियम किसी चीज के साथ में अकेले करो, ताली बजा के करो, दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, जब इच्छा हो तभी कोई कर सकता है। स्त्री पुरुष हो, सामूहिक रूप में हो, अकेले हो, दुकेले हो, कोई भी कर सकता है। इतना ये सबसे जाने, इसलिए नाम के प्रति भरोसा हो, नाम के प्रति में ऐसा ही विश्वास हो करके भगवान का नाम। और यदि प्याज लहसुन मांस मछली अखाद्य कुखाद्य छोड़कर सदाचार में लग करके और भगवान का नाम किया तो बहुत जल्दी से इसका फल हो जाए। एक सूखी लकड़ी है, एक गीली लकड़ी है। गीली लकड़ी वह है जो पानी में भीगी रहती है, आग देने से वो जलती नहीं है, बहुत जल्दी धीरे 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 जलते 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 पानी सुखा करके तब जलाएगी। इसी तरह से काम क्रोध इत्यादि के साथ में अभक्ष अभक्ष खाते हुए हरिनाम का करेंगे तभी अच्छा ही है, बुरा तो नहीं, किंतु वो भी गीली लकड़ी है। ये सबको दूर करके जब शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होंगे तब जाकर के हरि का नाम प्रकाशित होगा, ऐसे नहीं। इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार से विश्वास के साथ में भगवान का नाम लें। ये भागवत का श्रवण है, यदि ये कर लिया आज ही भागवत का श्रवण करना आप लोगों का हो गया। इसलिए आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल से कृष्ण की कथाओं को हम बोले, बहुत कथाएं हैं, मैं समझता हूं कि एक वर्ष में भी ये हमारा भागवत नहीं शेष होगा, और एक ही अक्षर भी पूर्ण है, एक अक्षर भी भागवत का पूर्ण है। और ऐसे जिस हम धैर्य से कर रहे हैं ऐसे काफी समय लगता है, कुछ आदमी 7 दिन में समाप्त करते हैं, उसमें वक्ता को भी कुछ नहीं मिलता, श्रोता को भी नहीं मिलता। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि एक भी चीज हो अच्छी तरह से समझा बिठा करके श्रोताओं को प्रभाव पड़े और श्रोता लोग उसको ग्रहण कर सके, ये भागवत पाठ। आज यहीं तक लो आरती करो।
बिंबाधरे प्रथमनाथ
अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कैसे कर रहे हैं? और रूप मंदिर नाम की एक सखी जिसमें बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत अपने पति का उसका पति आज 10-15 दिनों से कहीं बाहर गया है और इनके होटल पर हमने देखा कुछ सिंह, ये कहां से आ गए? फिर अपने मन में कहा, अरे शंका क्या करते हैं, कोई हरा सुख पक्षी होगा, उसने सोचा कि ये एक फल होता है
बिंब फल,
बिंब फल के लोग से झट आकर के बैठ गया। अब लेकर के उसने देखा ठोकर मार करके, अरे ये तो बिंब फल नहीं, तब फिर उड़ गया। तो इसमें कौन सी बात है? ये इनका प्रणाम देखो, प्रणाम शब्द कहीं है? कितना ऊंचा भाव, जैसे थे फिर देखो, आलोल चंद्र लसतपन मल्ल बंसी रत्नांगतं प्रणय के श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। हे प्रभु, आपका यह चित्र, आपका यह जो भाव है, दीजा है हमारे हृदय में, मैं आपसे दंडवत प्रणाम करके कोटि कोटि बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करें? आलोल चंद्रक, सामने चंद्र है ना, लोल्यमान, क्यों
कृष्ण अब इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, किस लोक से गोपियों के दर्शन के लोक से लसत बन माल्य बंशी फोटो पर बड़ी विराजमान बन माल्य बंशी माला तो दुल्यमान हो रही है, एक जगह स्थिर नहीं है, नहीं तो दो दुल्यमान कैसे होगी। श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाश, ऐसे कृष्ण को जो कि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर के भी ईश्वर है, मैं उनको इस लीला की। और वहां पर उनको देखो रूप मंजरी प्रथिता पुरेस्मिन पुंसा परस्य बदनम नहि पश्यसि इति ने रूप मंजरी कराचित पाद पद्म
गोष्ठेन्द्रनन्दन
पूजार्पितमस्तिकाय आमोदतः कनक गौरी पदारविन्दम संवाहनानि शनकैस्तव किं करिष्ये, शनकैस्तव किं करिष्ये। श्री रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजा अर्पित मस्तिकाया, विलास के बाद में श्रीमती राधिका जी अपने श्री को कृष्ण की गोदी में दे रखा है, कृष्ण उनके उलझे हुए बालों केशों को सुलझा रहे हैं बड़े प्रेम। रूप मंजरी घर में बैठी है, उनके श्रीमती राधिका के चरण को सब चर्चा बड़ी कोमल रूप से सहला है। देखा रति मंजरी को इशारे से बता, यह है रघुनाथ दास को लाया, ला करके कहते इस चरण को मैंने अभी सेवा कर रही है, इसको फिर सेवा करो, मैं एक काम से जा रही हूं। बस उनको चरणों की सेवा उनको दे दिया। और रूप मंजरी के पासी में एक पंखा था लेकर के, वही कारण रूप मंजरी कराचित पाद पर उन्होंने जिस चरणों की अर्चना की है, सेवा की है, अर्चित पाद गोष्ठेन्द्र नंदन पूजार्पित मस्तिकाया, पूजा में अर्पित कृष्ण की जो मस्तिकाया जो मस्तक लेकर के बड़े आनंद के साथ में आंखों को बंद करके आनंद का स्वादन कर रही हूँ, किस चीज का स्वाधीन पत्रिका का, जो कृष्ण से कहती है वही उसके आगे ही सब उनके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं मस्तिकाया। हाँ मुदत है हमारा ऐसा कौन सौभाग्य होगा, रूप मंजरी हमारे तरफ में देख करके कहेंगे अरे सखी घर आ जा, ये सेवित मेरे जो चरण है तुम उसकी सेवा करो और स्वयं एक पंखा लेकर हमारा ऐसा सौभाग्य होगा। अब दोनों मिलाओ, ब्रह्मा जी का प्रार्थना है इनको कहा उनका है, यदि भी कुछ वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब है करोड़ों जन्म में अभी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये स्वभाव इसका तृप्त और कितने हैं। तवैवास्मि तवैवास्मि नजमामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम चरणांतिके, कहाँ प्रणाम है राधा जी के, क्या क्या है उसमें, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, आप अपनी चरणों की सेवा में मुझे लगा दें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं नहीं बच सकता। कितनी विकलता के साथ में करें, हम लोगों के अंदर में तो विकलता नहीं, कहा कहा तो रहे हैं विकलता का चीजों का अधिकार होना चाहिए, तब तो उस रस में पहुंचेंगे, अभी कुछ जानते ही नहीं है कुछ, और उनकी हम सेवा में जाएंगे, हम पार किए भाव में आएंगे, सुन करके क्रोध होता था। सखी भाव कितना सरल है, इन भावों को हम जब तक नहीं देखेंगे, इनकी कृपा नहीं होगी तब तो कहां से हम जाएंगे, इसलिए अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं सखी और क्या क्या बनने पर हम लोग रूप गोस्वामी की रघुनाथ गोस्वामी की परिचारकारी होकर के हम उनके आनंद होने चाहिए, इसके लिए लोभ होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है दीवाना होकर के प्रेम करना, इसलिए दीवाना होकर के दीवानी होकर के करना, ये तो काम भाव सब होकर के सारी चीजें कहां काम कहां क्या, ये सब दूर हो जाएगा, अभी तो तुम झट बिगड़ जाएगी, हम बिगड़ जाएंगे, कोई चीज हमारी इच्छा के विपरीत होगी, मैं बिगड़ जाऊंगा, क्रोधित हो जाऊंगा, जिससे प्रेम है उसे प्रेम सदा के लिए छूट सकता है, अभी कोई कारण हो जाए ना हो जाएगा, जीवन भर में बातचीत नहीं होती, और वहां पर प्रेम के टूटने का की संभावना होने पर और बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि आप कभी कम क्रोधित होकर जब हमको ऐसा ऐसा मत कर और मैं इस सुधा का पान करूं। ये स्वभाव, ये स्वभाव होते हैं, ये सब तो इसलिए मैं कहता हूं तो समझ आता नहीं है। हमेशा कुछ जान लिया इस समय और कुछ बाकी नहीं जान। हम लोग इतना आगे बढ़ते तो देखते हैं कि हमें इतना एक सुई की नोक पर भी हम लोगों ने प्रवेश नहीं किया। मैं तो काम रहता, क्रोध रहता, अनर्थ रहता। उस समय में ये सब चीजें बंबई मुझे आने की क्या जरूरत थी वृंदावन छोड़ कर, इसलिए अभी कुछ कमी है। हाँ तुम सब जान गई है, तुमको तो अब कुछ बाकी नहीं है जाना, पूरी पंडित हो गई है। क्या होगा कृष्ण को प्यार करते हैं इधर देखो छोड़ दो सब, जैसा है इधर देखो छोड़ दो सब। मैं कृष्ण को, कृष्ण कह रहे हैं मैं राधा जी को या गोपियों को प्यार करता हूं, वो भी हमको प्यार करती हैं, किंतु गोपियों को देखकर के कृष्ण को जो आनंद हो रहा है उससे गोपियों को कोटि गुण आनंद होता है कृष्ण को दर्शन करने में। आ रहा है समझ में? कृष्ण अपने भक्तों को देखते हैं और भक्त कृष्ण को देखते हैं, किंतु कृष्ण को जो आनंद होता है भक्तों को दर्शन करने में, राधा जी का दर्शन करने में, उसे कोटि गुण सुख होता है राधा जी को या भक्तों को कृष्ण को दर्शन करने। क्यों? प्रेम के दो पहलू हैं। एक है प्रेम का विषय, बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा सा इधर उधर सावधान नहीं होंगे तो नहीं समझ सकेंगे। प्रेम के दो पहलू, एक प्रेम का विषय होता है और एक प्रेम का आश्रय होता है। कृष्ण समस्त प्रेमों के विषय हैं और उनके दास लोग, उनके सखा लोग, उनके माता पिता और उनकी प्रेयसियां जो हैं, प्रियाएं, ये सब प्रेम के आश्रय हैं। कह तो दिया किंतु समझना जरा, जब तक कुछ अधिक नहीं सुनेंगे नहीं समझ। यही भाव है भागवत का, इसलिए सब लोग भागवत को नहीं समझ पाते। भागवत है, प्रेम है, पोथी नहीं, प्रेम है कृष्ण के प्रति। उसमें कृष्ण जी ने मथुरा से उद्धव जी को भेजा था, जाओ वहां पर प्रेम की पाठशाला में कुछ पढ़ करके आओ, तब हमारी बातों को समझ सकेगा। इसलिए गोपियों के पास में उद्धव जी को भेजा, ऊपर से कहा कि उनको सांत्वना दे आना। अब भीतर से मामला क्या था, उद्धव मेरी बात नहीं समझ सकता, हमारी भावों को नहीं समझ सकता है, इसलिए जिस पाठशाला में मैंने पढ़ करके छात्र बन करके, गुरु करके और छात्र बन करके प्रेम का पाठ सीखा है, अढ़ाई अक्षर का प्रेम, उसी में ये भर्ती हो। अब भर्ती होने के बाद वहां पर पढ़े और पढ़ करके तब हमारा गुरु भाई बने और तब मेरी बात को समझेगा, से नहीं समझ सकता है, इसलिए उद्धव जी को भेजा, किसी को बतलाया नहीं। और उद्धव जी वो गए उस समय समझ रहे थे हमारे जैसा पंडित, हमारे जैसा विद्वान और हमारे जैसा कृष्ण का भक्त कोई नहीं है जगत, ऐसा समझ। हमसे श्रेष्ठ कोई कृष्ण का भक्त प्रिय ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण भी उनको कहते हैं तू हमारा हृदय है, मैं तुम्हारा हृदय हूं। इसलिए उद्धव का ऐसा था कि मेरे से श्रेष्ठ भक्त। किंतु वहां पर जब गए तो उन्होंने देखा कि इस पाठशाला में मैं भर्ती होने योग्य ही नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है उनका, स्टैंडर्ड नहीं है कि उसकी प्रेम की पाठशाला में भर्ती हो सके, बहुत नीचे का स्टैंडर्ड। गोपियों ने उनको अपने स्कूल में भर्ती नहीं किया। प्रिंसिपल कौन है प्रेम की? राधा जी, ललिता विशाखा इत्यादि ये सब बड़े बड़े शिक्षक आठ हैं, उसके अंदर में हजारों लाखों शिक्षक हैं। उद्धव जी देखा जो मैं तो छात्र होने जाए लोग, एक स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड हमें नहीं,
उन्होंने देखा जैसे कोई व्यक्ति चला जाए हिमालय में 29,130 फीट एवरेस्ट है सुनते हैं, और भी कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो एवरेस्ट से भी ऊंची हैं, उनका चढ़ना भी बड़ा दुर्गम है, वो इससे भी बहुत ऊंची हैं। वहां पर एक आदमी जाए और गंभीर कैप लगा ले टोपी और देखे ऐसा ऊंचा ना, तो ऐसे देखते देखते ऐसे हो जाने से टोपी गिर जाए, कितना बड़ा ऊंचा और हम कितने बड़े हैं, 3.5 हाथ के। वहां पर अपनी ऊंचाई मालूम पड़ती है जी, हमारी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में कितना अंतर है। उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा हिमालय से भी ऊंचा, हिमालय का तो आदि अंत है, उसका आदि अंत नहीं उस प्रेम का जो कितना ऊंचा है। निकट में गए तो देखा उनका सिर नतमस्तक हो गया, उन्होंने उनकी वंदना की, आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किम कुल मलकौषधीनां जह दुस्तजन स्वजन आर्य पथं च हित्वा हेजे मुकुंद पदमें सुतभेत विज्ञा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं जब देखा और छोर नहीं, कितना अथाह प्रेम है उनका, हमारा तो एक बिंदु मात्र तो प्रेम नहीं कृष्ण के चरण। उस समुद्र में ये डूब गए तो फिर ऊपर आने का कोई नाम निशाना नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने कहा मैं गोपियों की चरण रेणु के लिए पाने के लिए, चरण की थूली पाने के लिए मैं प्रार्थना करता, यदि हमारा कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य हुआ तो गोपियों की एक चरण की धूली की मैं वंदना करने योग्य नहीं। इसलिए जो ब्रह्मचारी के लिए जिनके चरण कमलों का ध्यान करना भी बड़ा मुश्किल है, ध्यान में भी नहीं आता कृष्ण के चरणों को, ध्यान नहीं कर सकते, अभी ध्यान कीजिए आएगा नहीं। बड़े बड़े योगी लोग इंद्र की बात तो क्या, शंकर जी, ब्रह्मा जी और लोग सब ऋषि मुनि लोग उनके चरणों कमलों का ध्यान करते हैं, वो नहीं आता। और गोपियां कृष्ण को भूल जाने की चेष्टा करती हैं, कहती हैं कि भूल जाना अच्छा है, किंतु भूल नहीं पाती। इन गोपियों की चरण धूली पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में कहीं गुल्म और लता के रूप में भी जन्म ले लिया, गुल्म और लता घास जो है दूब की घास जमीन पर कुछ उससे बड़े बड़े होते हैं, वो सूख जाते हैं, फल आया सूख जाते हैं, उनसे जड़ी बूटियां भी बनती, तो कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, यहां पर छोटी घास के लिए कह रहे हैं। किस लिए, गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं तो अनुग्रह करके इधर से यदि आ जाएं तो उनकी चरणों की धूली यदि हमारे सिर पर लग जाए हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, प्रभु हमको ऐसा ही जन्म देना अगली बार, उद्धव होकर के मैं नहीं आना चाहता, मैं तो वृंदावन में कहीं भी एक घास हो जाना चाहता, पेड़ बन जाओ, पेड़ होकर के क्या करूंगा, उस पर तो गोपियों की चरण धूली ऊपर जाएगी नहीं, सज रूप में गोपियां जा रही हैं और उन्होंने चरण रख दिया और उनकी धूली लग जाए मेरे पास, नहीं नहीं इतनी स्पर्धा नहीं करूंगा। स्पर्धा मैंने क्या, जो चीज नहीं मिलने की होती है उसको यदि मिलने की संभावना हम कर ले मन में, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, लोग सुन करके हंसेंगे, कोई संभावना है नहीं है। इसी तरह से उद्धव कहे जैसे ओहो मेरे लिए ये सौभाग्य होना बड़ा कठिन है, ये हो नहीं सकता, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके वंदना की, पुनः वंदे नंद ब्रजेष्ठीन पादुरेणुम अभिक्षण जातं हरे कथोद्गीत भुआ भुवन त्रयम्। और ये गोपियों, ये जो गोपियां हैं इनकी चरण धूली में से कोई एक की एक चरण धूली, एक धूली कण बहुत छोटी होती है, एक धूली कण ये निकाल लेना बड़ा भारी कठिन है, मैं किंतु कहते हैं कि आज उसी की मैं वंदना कर रहा हूं। एक चरण धूली होगी तो किसी के एक चरण की तो होगी ना, और एक चरण में ये किसका चरण की धूली मांग रहे होंगे, विचार कीजिए, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गोपियों में श्रेष्ठ कौन है, राधा जी, इसलिए राधा जी के चरण की एक धूली की वंदना कर रहे हैं, दूर से कर रहा हूं, यह हमारा सौभाग्य नहीं है कि उनके चरण की धूली हमारे सिर पर आ जाए। मैं घास होने पर भी आने की संभावना है। इतनी बड़ी चीज है ब्रह्मा और शंकर के लिए, तो हम लोगों के लिए तो बात क्या, उद्धव और नारद जी के लिए भी ये भागवत का संदेश है। इसलिए मैं बहुत दूर से प्रणाम करता हूं जिन गोपियों के मुख से निकली हुई जो भगवान की जो लीला कथाएं हैं और उनका जो गुण और जस है, विश्व ब्रह्मांड को एकदम पवित्र बना देता है। कृष्ण के साथ में गोपियों का जो लीला चरित्र है यह विश्व ब्रह्मांड को एकदम पवित्र कर देगा, ऐसी ये कथा है। कृष्ण ने देखा जब उद्धव जी आए और बोले गोपिया का कुछ संदेश लाए, मैं तो हैरान हूं मैं उनका संदेश क्या लाऊं, मेरी समझ भी नहीं आया। मैंने गोपियों से कहा देवियों मैं वहां से आया तो मैंने कहा कि आपके विरह में कृष्ण बड़े तड़प रहे हैं, उनकी बड़ी विचित्र दशा है। दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, पर एक गोपी कहती है अब ऐसा मत कहना, आप पूछते हो कि हम जाकर के वहां पर तुम्हारा संदेश क्या कहें, तो तू ये मत कहना जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी हैं और मर रही हैं, गोकुल के बछड़े मर गए, गायें भी मर रही हैं, पेड़ सूखने लगे, कोयल कुहकती नहीं, मोर नाचते नहीं, सखा लोग अब खाते पीते नहीं, गोचारण को जाते नहीं, जसोदा मैया सूख करके काटा हो गई हैं, किसी में प्राण का संचार है कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता, ऐसा कहूं? गोपियों ने खबरदार कृष्ण से मत कहना, ये कहना ये सुन करके वो बड़े दुखी हो जाएंगे और उनका प्राण नहीं रहेगा, वो तो मक्खन से भी कोमल है। तुमने हमसे कहा कृष्ण हमारे विरह में बड़े दुखी हैं, तो हम लोग मरे नहीं, किंतु कृष्ण ने ये सुन लिया कि गोपियां हमारे विरह में दुखी हैं, तो वो रह नहीं सकते, तत्क्षण प्राणों को छोड़ देंगे, बड़े कोमल हैं, मक्खन होता है ना हाथ में लेने से ही पिघल जाता है, कृष्ण उससे भी कोमल है, उनका मन इतना भी कोमल है, मत कहना। उनसे कहना गोपियां बड़ी सुखी हैं, खाती पीती मस्त हैं, आपको याद नहीं करती हैं, ऐसे कहना। और ये मत कहना जी गोपी दुखी, यदि कहना तो धीरे धीरे कहना, एक कपड़ा है ना पुराना पानी में भीग गया, उसको पानी निचोड़ना है तो जोर से मत निचोड़ो नहीं तो फट जाएगा। कृष्ण का कोमल हृदय है, यदि थोड़ा सा कुछ जोर से कह दिया तो ऐंठने के समान उनका हृदय फट जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बतलाना, एक दिन में मत बतलाना, महीनों में वर्षों में हमारी स्थिति को बतलाना। पहले तो यही कहना जो बड़ी सुखी है, आपको भूल चुकी हैं, कोई चिंता नहीं करती हैं, खाती पीती हैं, मस्त करती हैं, श्रृंगार करती हैं। वो कहते हैं जो कृष्ण यदि हमको भूल गए तो हम भी उनको भूल जाएंगे, इसमें क्या है। कृष्ण ने सुनकर के कहा, उद्धव जी जब आए तो उन्होंने कहा उनसे, वह गोपियों को हमारे प्रति कितना प्रेम है, राधा या प्रणय महिमा की त्रिशा, राधा जी का हमारे प्रति जो प्रणय है यह कैसा है, साधारण आदमी इस चीज को कल्पना नहीं कर सकता। एक बीज है भक्ति का, वो बीज क्या है, मां प्रभु जी कहते हैं यदि कोई साधु संत आकर के हमारे हृदय में इस चीज को बतला करके हमारे हृदय में भावना करा दे, कृष्ण की सेवा कैसी होती है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये जो भावना जीव के हृदय में दे देना यही भक्ति लता का बीज है। क्या बतलाया, मैं कृष्ण की सेवा, तुम कृष्ण की सेवा करना, इसी से तुम्हारा संसार सुखमय हो जाएगा, भव सागर को पा करके कृष्ण के चरणों को पा करके अनंत काल के लिए सुखी और शांति तुम हो जाएगा, जीवन तुम्हारा कृतार्थ पूर्ण हो जाएगा, ये संसार के किसी भी चीज से नहीं होगी। कोटि कोटि बार हम लोग जन्म लिया मरे हैं, स्त्री का कभी, पुरुष का कभी, कभी देवता हुए, कभी सुअर कुकर गधे हुए, कभी कुछ हुए, कभी राजा हुए, कभी प्रजा हुए, ऐसे ही हम घूम रहे हैं, कभी भी हमें सुख शांति नहीं मिली। इस मनुष्य जन्म में हम आए हैं, यदि इसको गवा दिया तो हमारा जन्म बेकार का चला जाए, इसलिए संसार के सुखों में मत, विषयों में मत भूलो,
तो कृष्ण की सेवा करने से, उनका नाम करने से, कथाओं को सुनने से ये भावना आती है कि हम भी कृष्ण की सेवा करें। गुरु दीक्षा के माध्यम से इसी चीज को देता है शिष्य के हृदय में, और ऐसा देता है कि जीवन जन्मांतर में कोटि कोटि जन्म में इस चीज को नहीं भूल सकता कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा करूँ। यही से आरंभ हुआ। इसका पहला स्टेज है श्रद्धा, इसे वो कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या? खंड खंड हमारे शरीर का हो जाने पर भी, विश्व ब्रह्मांड हमारा यदि उल्टा हो जाए, विरोधी हो जाए, तभी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, इस दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा। अब इसी को बतलाइए, ये कितने के लोगों के हृदय में ऐसी श्रद्धा होगी? यदि 10 रुपए का भी कहीं अंतर पड़ता है तो कहे छोड़ दो, कृष्ण भक्ति कोई जरूरत। कभी कभी पति कुछ आगे बढ़ गए, जब मैं भजन करूंगा और गले में माला लेकर के यही घर में पहुंचे, श्रीमती जी बड़ी बिगड़ गई है, तुम अब क्या साधु होगा, घर बर्बाद करेगा, जल्दी उतारो, और अपने हाथ से निकाल दिया। वो देखते रह गए, जाओ खबरदार मत जाना अब उनके यहाँ, और यहाँ जो पाठ होता है प्रवचन रात में 8 बजे से 9 बजे, इसमें कभी मत जाना, ये बर्बाद कर देंगे, और जाएगा यदि तो मैं घर से चली पीहर को, और इस पर भी यदि नहीं मानेगा तो मैं बीच खा करके मर जाऊंगा। कहा भाई ये देवी जी आपको प्रणाम है, मैं नहीं जाऊंगा, संभाल लेना, आज माला पहन करके आइए, कल साधु बनेगी, फिर लाल कपड़े रंगेगी, फिर साधु होकर के वृंदावन में जाएगी, उसके पहले ही मैं मरम्मत कर दूंगा, ऐसी मरम्मत करूंगी ये छठी का दूध याद आ जाएगा। राजे भाई नमस्कार है, इस हरि भजन को अब नहीं जाऊं, मैं कान पकड़ती हूँ आपके सामने में। यदि बेटा जाने लगा कान ऐसा ऐड करके, जब तुम गंदी हरकत कर रहा, खबरदार मत जाना, बस एक दिन गया 2 दिन के बाद बस बंद। हरिदास ठाकुर जी को मुसलमानों ने पकड़ लिया, कहा जी तुम मुसलमान होकर के हरे कृष्ण करता है, हिंदुवानी करता है, अभी तुमको मजा चखाते हैं, 22 बाजारों में से घोड़े के कोड़े मार करके इसका प्राण निकाल दो। बस मुसलमान जल्लादों ने पकड़ लिया, कहा जी हरिनाम आप करेगा? अतः हाँ करूंगा। अच्छा देख, बस सपाक सपाक कोड़े लगाए, उनके मांस निकल गए, चीथड़े शरीर को कर दिया, बोटी बोटी उड़ने लग गई, केवल हाड़ रह गया, और तभी कृष्ण कृष्ण अभी क्या मारा तुमने, खंड खंड यदि हो, यदि हमारे शरीर का खंड खंड यदि कर दिया जाए, बोटी बोटी कर, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकता, और ऐसा ही उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा जैसे ये बेटा तो ये छोड़ेगा नहीं, अरे भाई आप मर जाइए ना, नहीं तो अभी वो बादशाह है हमको अभी मार डालेगा, हमारे स्त्री पुत्र सबको मारेगा। अच्छा ठीक है, तो वो श्वास रोक लिया। उन्होंने कहा जी इसको गंगा नदी में डालो तो जैसे नरक में जाए, मट्टी में गाड़ने से, कब्र में जाने से तो ये इसका मंगल हो जाएगा, इसका कल्याण नहीं करना है, ऐसा करो दोजख में जाए, इसलिए गंगा नदी में फेंक दिया। गंगा नदी के फेंकने के साथ ही साथ में जैसा उनका शरीर था वैसे हो गए, और जोर से भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हुए
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
एकदम निकल गया। अरे ये क्या भी इसको मार करके खत्म कर दिया, ये फिर आ गया, अरे ये तो जिंदा पीर है। बस उसके चरणों में लुढ़क गए और कहा क्षमा कीजिए अब ऐसा नहीं करें। जिनके परिकरों की ये बातें हैं तो है महाप्रभु जी कैसे होंगे चैतन्य मान। तो इस तरह से खंड खंड जीव जाने होने पर भाई संसार के समस्त लोग हमारे विपरीत हो जाएंगे, किंतु अब जो गुरु जी ने हमारे अंदर में कृष्ण सेवा की जो भावना दिया ये इसको कभी नहीं छोड़ सकता। मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आज उन साधु संतों के पास में बैठ करके लोग लज्जा खो करके करने लगी कीर्तन, किसी की परवाह नहीं। मनुष्य जन्म लेकर के भगवान का भजन नहीं किया तो उनका जन्म गधे और कुकर और सुकर की तरह है, इस चीज को समझ। ये तो अभी प्राथमिक सबसे पहली अभी उसका ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा बढ़कर के निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव बहुत ऊपर पहुंच जाता है। वो भाव होने पर कृष्ण के प्रति उसका प्रेम होता है, इसको कहते हैं महाभाव। राधिका जी का कृष्ण के प्रति महाभाव, सखाओं का उनके प्रति अनुराग है, जसोदा मैया का कृष्ण के प्रति अनुराग है, कंस उसी कृष्ण को देख रहा है और क्रोध से एकदम थर जाता है। आज यशोदा मैया कृष्ण को देखते ही गोदी में लेकर के स्तन दे करके और ऐसे ऐसे सहलाती हुई आंख से आंसुओं की धारा इधर स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। किस लिए? गोपियां कृष्ण को देखते मुग्ध हो जाती हैं और जरासंध, दुर्योधन, शकुनी, द्रोण, कर्ण, इनकी क्या स्थिति होती है? मारो इनको, मारने के लिए क्रोध उपर। क्यों? उनके अंदर में प्रेम स्नेह ये नहीं। इसलिए सबसे यह प्रेम जो अंतिम स्थिति में जिस व्यक्ति में है, कृष्ण को देखते ही उसके कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम स्थिति आई। हम लोगों का अभी प्रेम नहीं, अभी तो श्रद्धा है कोमल ना? अभी अर्थ के बाद में बह जाए तो ये भी गई, विषयों में फंस गए तो ये भी गया। ये वो अनुराग है, प्रेम है, महाभाव है, वो कृष्ण को देख करके क्षण क्षण में कृष्ण को नवीन से नवीन रूप में अनुभव करता है। राधा जी में कृष्ण से अधिक ये है, इसलिए राधा जी कृष्ण को देख करके उनको इतने आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति होती है जो कृष्ण को नहीं होती। राधा जी कृष्ण को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, कृष्ण पागल नहीं हो, वो पागल हो जाती हैं। क्यों? वो भाव है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इस बार मैं ऐसा कोई जन्म लूं जो राधिका जी का यह भाव हमारे अंदर में आए तो मैं कृष्ण के इस प्रेम को, राधा जी के इस प्रेम को समझ सकूं। इसलिए कृष्ण ही राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति लेकर के चैतन्य महापुरुष आए। ये चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जी स्वयं बलदेव है, आदि जो विष्णु है वो है अद्वैताचार्य, हरिदास जी ब्रह्मा है, गदाधर पंडित जी राधिका है। ये सब देश बदल करके जगत में कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम प्रचार करने, राधा जी क्या है, कृष्ण क्या तत्व है, भागवत क्या चीज है, इसकी शिक्षा देने के लिए। ब्रज क्या चीज है? ब्रज एक मिट्टी नहीं है, यह प्रेम का एक भाव है। इसको समझने में बहुत साधन चाहिए, ऐसा गुरु उच्च कोटि का होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखा कि इस प्रेम को जगत में कैसे दिया जाए, तो उन्होंने कीर्तन के माध्यम से सब लोगों को यह प्रेम दिया। जो सौभाग्यवान लोग उस समय में जन्मे थे उनको दिया, और इसके बाद में अपने लीला को इस प्रकार से छोड़ गए जो आज उनकी कथा सुन करके हम लोग भी उस प्रेम के लिए लोभ उत्पन्न होता है, तब फिर साधन में प्रवेश करते हैं। कृष्ण के प्रति एकांत की भक्ति आती है, राधा जी के भावों के लिए पाने के लिए लोभ हृदय में आता है। यदि मैं ये कथा कह रहा हूं, यदि आप लोगों में थोड़ा सी भी भक्ति आ गई, एक श्रद्धा भी आ गई, तो मैं समझूंगी आप मेरा इतना परिश्रम करना सफल हुआ। पैसे की तरफ में दृष्टि नहीं, इसके लिए नहीं, आप लोग यहां पर आएंगे इसलिए आएंगे, हमसे कृष्ण की भक्ति की थोड़ी सी चीज भी आप लोगों के हृदय में आ जाए, आपका कोटि कोटि जन्म सुधार हो जाए, कृष्ण का प्रेम आप लोगों के लिए सुलभ हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लोगों को आकर्षण करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका निकाला जो कुछ नहीं समझते हैं। गाय जा रही है, आदमी जा रहे हैं, अन्य मनुष्य हैं, सवेरे सभी लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जग रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी टोली ले ली और लेकर के ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हाथ ऐसे उठा रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
माँ प्रभु जी ऐसे कीर्तन करते हुए आंखों से आंसुओं की लड़ी बहेगी धारा, सुखती नहीं, उनके भक्त लोग उनके पीछे पीछे नृत्य करते हैं और ऐसे ही बड़े मधुर स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं। गायें जा रही हैं, कान खड़ा करके सुन रहे, तृण गुल्म लता भी उनके कानों में भी गया, ये पेड़ सब लगे हुए हैं वो सब जो सुनना नहीं चाहते उनके कानों में भी, जो सो रहे हैं बड़ी मधुर आवाज आ रही है उनके कानों में। इसलिए जो चाहता है नहीं चाहता सबके कानों में गया वो उनका किया हुआ मन और सबका उद्धार कर, ऐसा ये कृष्ण नाम है। और इसके माध्यम से सब लोगों को नचा दिया, ऐसा उस समय कोई नहीं था जो नाचने न लगा हो इस प्रेम को पा करके। जगाई मधाई जैसे पियकड़ लोग भी मदिरा पान करके लोगों को मारते पीटते गाली गलौज करते, परम महान महात्मा
ऐसे ऐसे लोगों को जो अब कल्पना नहीं कर सकते हैं, सबका जीवन सुधर गया और वह जो प्रेम ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है उन्होंने दे दिया। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो कीर्तन करते हैं उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद। हम लोग उनके ऋणी हैं। आज विश्व में जो नाम कृष्ण का जो चल रहा है विश्व भर में, इसके मूल में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, स्कूली बच्चों को जो छात्र थे, और उनको लेकर के नगर में निकले, प्रत्येक नगर में, वहां से बंगाल भर में, वहां से यूपी में, इधर में, दक्षिण प्रदेश में, सर्वत्र। अब उसकी शाखाएं प्रशाखाएं, ऐसा जगत में कोई राष्ट्र नहीं है, कोई गांव नहीं है, शहर नहीं जहां पर कि इसकी ध्वनि नहीं चलती। देखते हैं ना विदेशों से कितनी स्त्रियां पुरुष बच्चे सभी लोग मुंडन कर करके साधु बन करके, स्त्रियों जैसे स्त्री लोग वहां का कपड़ा पहन करके और कृष्ण कर रहे हैं। इस किसकी बदौलत? महाप्रभु के बदौलत। वो जज नहीं आते, हम लोग इस कृष्ण नाम को सुनते नहीं और ये सब बातें नहीं होती, भागवत भी लुप्त हो गया होता, कृष्ण नाम कीर्तन भी लुप्त हो गया होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ये देन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए। अब हम चलते हैं अपनी कथा पर। आज हम लोग प्रहलाद चरित्र का कुछ वर्णन करेंगे, बहुत से उसमें शिक्षाएं। तीसरे दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे हैं। कल कथा सुनाया ध्रुव चरित्र, उनकी भक्ति तो थी किंतु अपने लाभ के लिए, अपने राज्य को पाने के लिए, अर्थ को पाने के लिए, रुपए पैसे पाने के लिए, राज्य पाने के लिए भगवान की आराधना की और भगवान ने उनको निष्कंटक पृथ्वी का राज्य 36,000 वर्ष के लिए दे दिया और इसके बाद में उनको स्थिर लोक दे दिया। आज हम कुछ इससे और बचेंगे। यदि मांगेंगे तो ये जो हरिनाम दिया है या भक्ति जो कर रहे हैं, एक भी कृष्ण नाम करेंगे, कृष्ण इच्छा करें सब कुछ दे देंगे, खबरदार मांगिए मत। कैसे? इसको प्रहलाद महाराज की कथा सुनने से आपको मालूम होगा। प्राचीन काल में एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सब ऋषि लोग बैकुंठ पहुंचे। ये लोग 4 वर्ष की 5 वर्ष की उम्र वाले सब थे। इसी इनकी कोटि कोटि उम्र हो जाने पर भी वर्ष की बड़े नहीं होते थे, सब समय छोटे बच्चे के समान 5 वर्ष के और नंगे धड़ंग घूमते थे। सब ऋषियों के, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र ये हैं, नारद इत्यादि के भी बड़े भैया हैं ये लोग, उनके भी पूज्य हैं। एक तरह से आदि गुरु यही सनक सनंदन सनत सनत कुमार है। इनको चतुर कुमार या चार कुमार कहा जाता है। ये एक समय में बैकुंठ पहुंचे और वहां पर जय विजय नाम के 2 प्रहरी थे। उन्होंने कहा जो इधर नहीं आ सकते खड़े हो जाओ, बस उनको खड़ा कर दिया। बेत उनके हाथों में था, बेत को अड़ा दिया। उन्होंने कहा जो यहां पर भगवान को किसी से डर है? भगवान को तो किसी से डर नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो यहां पर पहरे की क्या जरूरत और ये हमको मना क्यों कर रहे हैं? तुम लोग किस लिए मना कर? उनको डर भय है प्रभु को हमसे, जब डर नहीं है तो क्यों हमको रोकते हैं? जाओ, तुम हमको रोकते हो, तुम 3 जन्मों तक तुम राक्षस असुर बन करके जन्म करो। तत्क्षणात वो असुर होने लगे, भगवान निकल करके भीतर से आए, बोले जैसे प्रभु ये हमारे सेवकों ने आपके चरणों में अपराध किया है, ये इनका अपराध नहीं, ये मेरा ही अपराध है, आप हमें क्षमा करें। कहने के साथ साथ में जोग माया ने उनके ऊपर में, ज्ञान के ऊपर में जो पर्दा था हटा दिया। रोने लगे ऋषि लोग, हमने क्यों अभी संपात किया, यहां पर क्रोध क्यों आया हमको? और उधर में जय विजय जो थे वो भी रोने लगे जो हमने इनको क्यों मना किया। प्रभु जी ने कहा इसका एक कारण है, तुम लोग नहीं समझेगा, ये हमारी योग माया की इच्छा से हुआ। यहां पर तो क्रोध नहीं है, काम नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, इनको क्रोध हो गया, उन्होंने उनको क्रोधित कर दिया। इसमें कुछ रहस्य है, भगवान की इच्छा थी कि मैंने सब रस आस्वादन किए, मैं कहता हूं कि मैं बिल रस का भी आस्वादन, किंतु हमारे समान लड़ने वाला कोई नहीं है। यदि भगवान का कोई परिकर हो, जय विजय जैसा, वो हमसे लड़ो। जय विजय ने प्रभु की इच्छा जाननी पाजी, मैं असुर होकर के आपको लड़ा करके आपको ये सुख भोगा दूंगा। इसलिए प्रभु की इच्छा जान करके उन्होंने ऐसा किया और वो बिगड़ करके ऐसा किया। इसलिए ये मेरी इच्छा है, ये लोग जन्मे और जगत में मैं लीला करूं और सब लोग उस लीला को सुन करके सबका उद्धार। इसलिए प्रभु की इच्छा से ऐसा, नहीं तो बैकुंठ में वहां पर क्रोध कैसे होगा? वहां पर क्रोध नहीं होता, काम नहीं होता, लोभ नहीं होता, मत्सरता नहीं होती। ये सब चीजों को तो साधक अवस्था में ही पार आदमी कर जाता है। इसलिए वही जय विजय पहली बार में हुए हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को प्रभु ने बराह रूप धारण करके मारा। और हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र थे, चार पुत्र में सबसे छोटे पुत्र ये थे प्रहलाद महाराज। इसके पहले, इन लोगों के जन्म के पहले, जब हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष को प्रभु ने बराह रूप से मारा, तो उनकी स्त्रियां रोने लगी, उसकी मैया रोने लगी, सब लोग घर वाले रोने लगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, भाई रोते क्यों हो? असुरों का स्वभाव है, गीता भागवत पढ़ेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, किंतु अपने पालन नहीं करते। एक असुर राक्षस ये कहेगा, सच बोलो, किंतु अपने सच नहीं बोलेगा। दुर्योधन कहेगा, युधिष्ठिर महाराज तुम सच बोलो, आज युधिष्ठिर महाराज नहीं कहेंगे, वो सच बोलेगा। तो जो पालन नहीं करते और दूसरों को उपदेश देने में बड़े पंडित हैं, ये लोग असुर और राक्षस की श्रेणी। असुरों को कोई सिंह नहीं होती, मुख ऐसे नहीं होते, वो तो फोटो में बना दिए जाते हैं। असुरों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो असुर हैं, आज जो भगवान का भजन करते हैं वो देवता है, भक्त है, इस चीज को समझो। तो हिरण्यकश्यपु वो कह रहा है, क्यों भाई रो रहे हो? एक बात करो, हम पृथ्वी के सब लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं, पांच अरब छह अरब जो जितने भी लोग हैं, और सभी लोग रोएंगे, तो ये जीत जाएगा कि नहीं जिएगा? अरे नहीं जिएगा, रोने से कोई जीता? तुम जितना भी रो वो नहीं जिएगा। दूसरी बात है, एक बात और बतलाओ, तुम्हारे सामने तो सोया हुआ है, इसे उठ करके बातचीत करा लो, इसे क्यों नहीं बातचीत कर? यही तो तुम्हारा पुत्र है जिसके लिए रो रहे हो, यही तो तुम्हारा स्वामी है, यही तुम्हारा बेटा है जिसके लिए रो रही, ये तो पड़ा हुआ है, इसे बातचीत करो। तो ये बातचीत नहीं करते, क्यों नहीं करते? आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई तो तुमने आत्मा को प्यार किया था ना, ये शरीर को किया था? किसको करते हैं? पति कौन है? आत्मा है ना, ये शरीर बना हुआ है, शरीर को ही हम पति करें, उसी को बेटा करें, उसी को स्वामी कहते हैं, उसी को राजा कहते हैं, उसी को प्रजा, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब शरीर को, आत्मा के लिए नहीं। अच्छा ये बतलाओ, आत्मा के लिए रो रहे हो, अच्छा वो कितना फुट ऊंचा था, लंबा, और कितना मोटा था, उसके पैर कैसे थे, हाथ कैसे थे, सिर कैसे थे? तो हमने तो देखा नहीं था, तो आत्मा को देखा नहीं है फिर उसके लिए रो रहे हो? आ रहा है समझ में? इसके अंदर में जो आत्मा है जो निकल जाती है, उसको कोई तो देखा नहीं, फिर किस लिए रोना? जो जिसके लिए रो रहे हो तो सामने पड़ा हुआ है, किंतु कल वो सड़ जाएगा, परसों एकदम सड़ जाएगा, और घर में रखोगे तो भूत होकर के आ जाएगा, तंग करेगा, इसलिए जल्दी से निकाल करके इसको संस्कार कराओ। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं मरता, शरीर में आता है तो उसको कहते हैं जन्म, या छोड़ देता है तो इसको कहते हैं मृत्यु। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। यह हिरण्यकश्यपु उनको समझा रहा है। देखो, एक कबूतर कबूतरी थी, बहुत दिनों में उनका प्रेम चलता था, दोनों जब इकट्ठे होते बड़े प्रेम से चोंच में चोंच मिला करके बड़े प्रेम से बातें करते, कैसे वो मिले, कैसे बच्चे हुए, कैसे क्या हुआ, ये सब। एक दिन कुछ बच्चों को छोड़ करके घर में घोंसले में, और दोनों उनका खाना लाने के लिए, चुंगने के लिए कुछ बाहर, एक नदी बह रही थी, उसी नदी पर सुंदर से वृक्ष थे, नीचे हरियाली भरी हुई थी, उस पेड़ की डाल पर दोनों बैठ करके आप बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा बूढ़ने लगा है, छोटा वाला कुछ अभी अभी पंख नहीं निकला है, कितना सुहावना है, हमारा प्रेम कब से कैसा चलता है, यही सब बातें हो रही थी। इतने में कबूतरी ने देखा नीचे घास थी, हरियाली मैदान, उसमें चावल के कुछ कण मिले। पत्नी ने कहा प्रियतम बहुत सुंदर सुंदर मोती जैसे चावल के कण दिख रहे हैं, हमारे मुख में पानी आ रहा है, आप चलो चूंग लें और बच्चों के लिए कुछ ले जाएंगे। उसके पति ने कहा कबूतर ने देखो ऐसा मत करना, इस जंगल में चावल के दाने कण कहां से आएंगे, ये बाजार छोड़े थे, ये चावल बिकता है उसके कण बिखरे रहे, यहां पर खेती तो होती नहीं, यहां से कहां से आए, ये जरूर किसी बहेलिए ने ये चावल के कण फेंक दिए हैं, यहां पर जाल लगा हुआ है, तुम यदि जाएगी जाल में फंसा लेगा। उसने कहा पुरुषों को सब समय षड्यंत्र की बू आती है, मैं तो चली तुम रहो, ये कहकर फुर रूड़ी और उसके दाने चुंगने लगी और उनको इशारे से बुलाने लगी, वो कुछ प्रतीक्षा कर रहा है। इतने में बहेलिए ने देखा कि अब तो ये प्रेम से खा रही है, दाना चुंग रही है, उसने रस्सी को खींचा उसके अंदर में वो जाल में, अब तो विलाप करने लगे, मरी रे मरी रे। पति से रहा नहीं गया, वो भी उड़ करके फिर आया और जाल के बाहर से उसके मुख में मुख मिला करके वो भी रोने लगा, मैं क्या करूं, आज हमारी प्रीति समाप्त हो चली, मैं जानता तो मैं कभी नहीं यहां आता, ये जाल के अंदर में पड़ी है, मैं बाहर में पड़ा हूं, मैं जाल में चला जाता, ये बाहर में रहती तो अच्छा होता, बच्चों का पालन पोषण तो कर लेती, एक छोटा एक दो महीने का बच्चा मैया छोड़ करके चल बसी, पति क्या करेंगे, और पति चले भी जाएंगे तो बच्चों का पालन पोषण स्त्री किसी न किसी रूप में वो कर लेंगे, यदि दो दिन तट्टी की ना, पिताजी गोदी में लेकर के बैठे दो दिन तट्टी कर दिया तो कहेंगे आप हटाओ हटाओ इसको, भैया कितना पालन पोषण करती है, बेटे को मालूम नहीं, बेटे कपूत हो जाते हैं, ऐसे मैया का आदर नहीं करते, ये स्वर्गलोक में जाने पर भी अपने मांस अपने आप खा करके उसको कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए माता पिता का ऋण कभी भी पुत्र नहीं चुका सकता, किंतु आजकल तो विवाह होते ही बस हो गया, माता पिता अपने उतर रहे हैं, अब हमसे उनसे कोई सरोकार नहीं, तो वही कह रहे हैं मैं इनका पालन पोषण नहीं कर सकता, अब क्या होगा, यही कह करके वो भी रोने लगा खूब जोर से। बैलिए ने देखा और क्रूर हंसी हंसी, ये भी अब ठीक हो गया है, ये भी रोने में मस्त हो गया है, होश नहीं है, बस वहीं से धनुष बाण उठाया और खूब जोर से लेकर के बाण मारा, ये बार में था बस छाती में लगा, इस पार उस पार हो गया, वो भी लुढ़क ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया, उस दोनों को पकड़ करके एक जगह बांध करके रख करके चला गया घर, और घर जाकर के आग में सेंक सूख करके खा गया। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं देखो ये तुम्हारा, अब तुम लोग जैसे विलाप कर रही है तुमको पता नहीं ये तुमको भी मरना है, जो जो जन्म है उसको भी मरना है, आप लोगों में भी, ये बुरी बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग से महाराज जी ऐसे ही कह रहे हैं ये मरना पड़ा, अरे हम तो अभी बच्ची हैं, हम किशोरी हैं, अभी बूढ़ी नहीं हुई, बूढ़ा नहीं हुआ, अभी बच्चे हैं, मरना पड़ेगा जरूर, जिसका जन्म हुआ एक दिन मरेगा, बूढ़ा होगा यदि बीच में नहीं मर गए, अस्पताल में जाइए ना हिंदुजा और दूसरे अस्पताल में देखिए कितने अपने आदमी रोज मर रहे हैं, यहां तो पता नहीं चलता, यहां पर दो एक कभी कभी हो जाता है, वही समझा रहा है, एक तो मरा हमको भी वही जाना है और ऐसे रो रहे हैं जो उसका होश नहीं, अरे उसके बदले में कुछ हरिनाम करो, उनको भी सुनाओ अपने भी सुनो, उसका भी कल्याण करो अपना भी कल्याण, आ रोने में ही लग गए तो उसका भी जन्म बर्बाद हुआ तुम्हारा भी जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से हिरण्यकश्यप को उनको करा, किंतु अपने दूसरे दिन सभा बुलाई और कहा जैसे जितने भी यहां पर देवता हैं गायें हैं गायों का वध कर दिया जाए, जितने दूध देने वाले, और उन ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए जो लोग गाय के दूध से घी बना करके हवन करते हैं उस प्रभु के लिए और उसी को विष्णु पा करके मजबूत रहता है बलवान बना है, इसलिए ब्राह्मणों को गायों को हरे पेड़ को सबको काटो, जो अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं उनको मार डालो, हमारे राज्य में स्थान नहीं है, उत्पात करने लगा। इसके बाद में उसने ब्रह्मा जी की बड़ी भारी कठोर तपस्या की, 7,000 वर्ष तक तपस्या की। इसी बीच में इंद्र ने उस पर आक्रमण किया और उनमें बड़े बड़े सेनाओं के सेनापतियों को मारा और उनकी जो स्त्री थी कयाधु उनको पकड़ लिया। गर्भ में उस समय प्रहलाद महाराज जी थे, पकड़ करके ले जा रहा पैर स्वर्ग में। सोचा जैसे जबकि इतना बड़ा भारी वीर है ये हिरण्यकश्यप, तो उसके गर्भ में जो अभी पेट में उसकी मैया के है, ये न जाने कितना बड़ा भारी बलवान होगा, ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को अत्याचार से डुबा देंगे, इसलिए अभी बचपन में ही यही जन्म होगा मैं उसे काट दूंगा, ऐसा सोच करके ले जाए। इतने में नारद जी ऊपर से आए, बोले जैसे तुम इस स्त्री को कहां पकड़ करके ले जा रहे, अरे इसके हृदय में इसके गर्भ में तो एक परम भगवत भक्त है जिसको तुम क्या पृथ्वी का कोई भी नहीं मार सकता और इसके द्वारा जगत का बहुत कल्याण होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उन्होंने उसी जगह में उनकी परिक्रमा की और वहां से छोड़ करके चले गए और वो नारद ऋषि प्रहलाद जी को लेकर के मैया को लेकर के अपने आश्रम में आए और वहीं पर जब तक कि वो नहीं आया हिरण्यकश्यप लौट करके तब तक अपने आश्रम में रखा। उनकी स्त्री ने इनकी सेवा करके नारद जी से वर मांग लिया कि हमारा इच्छा के अनुसार में पुत्र जन्म, पहले नहीं हो जाने तो इंद्र आकर के मारेगा, इसलिए 60,000 गर्भ में रहे और 60,000 वर्ष तक भगवान की कथाओं का सुना। यदि सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष या 16 वर्ष गर्भ में थे और सुना और ये 60,000 वर्ष सुने तो कैसे महात्मा होंगे, इसीलिए जन्म से ही ये महात्मा हुए। जब ये 5 वर्ष के हुए स्कूल में गए, स्कूल में इनके संडामर्क दो गुरु थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे। दो गुरु थे, एक संड एक अमर्क। संडामर्क, संड माने होता है सांड, बरसात के दिनों में हरी हरी घासें खा करके लंबा पिछपानी जैसा टट्टी करता है, उसका गोबर भी नहीं हो सकता, कंडे भी नहीं हो सकता, लिपने पुतने पे भी काम नहीं जाता नहीं? इन संडों से भगवान का भजन से कोई भी मतलब नहीं है, घूम रहे बेपरवाह होकर के घूमते हैं, किसी के खेत में मुख लगाया, किसी की टोकरी में फल रखा है, बाजार में जाते समय तो एक डंडा लिया एक मुख पर ऐसा मारा, सब्जी बाजार के दुकानों में। इनको कहते हैं संड, माने भगवत भक्ति से तत्व ज्ञान से जिनका कोई भी संबंध नहीं है, ये सांड के समान, और इंद्रियों पर इनका कोई कंट्रोल नहीं, जहां तहां मुख लगाएंगे और जहां तहां मार खाएंगे। और अमर्क माने क्या, जिनको ज्ञान नहीं है, ज्योति नहीं है, मर्क माने होता, अर्क माने होता है सूर्य, सूर्य की ज्योति माने प्रकाश नहीं, जहां पर सब समय अंधकार है, अंधकार कहां पर है, जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधकार है। गुरु इस अंधकार को दूर करते हैं भगवत तत्व ज्ञान से, तो ऐसे जिनके गुरु हैं उनको क्या भक्ति होगी, वो भक्ति का कुछ नहीं जानते, किंतु इतने जानते थे यदि कोई आदमी मर गया ना मंत्र पढ़ करके पानी छोड़ देंगे तो वो जीवित हो जाता, किंतु इसको शास्त्रकारों ने आसुरिक विद्या इसको कहा, आत्मज्ञान को देवताओं की विद्या कहा, सुविद्या ये और वह कुविद्या। कुछ दिनों के बाद में प्रहलाद महाराज जी जब कुछ पढ़ गए उसकी बातों को तो सुन लेते थे और घर आकर के भजन करते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक दिन आए, उसकी मैया ने उसको खूब सजा दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिया, पिताजी ने उसको गोदी में ले लिया और बड़े सुंदर देखने में थे, बड़े बुद्धिमान तेज थे, इसलिए और भाइयों को तो नहीं इनको गोदी में ले लिया। पूछा, बेटा तुम स्कूल में गया पढ़ने के लिए, तुमने सबसे अधिक जो अच्छी बात है उसमें से दो एक बातें सुनाओ हमको, ये क्या तुमको अच्छी लगी। प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन ने असुर वर्ज्य देहिनाम सदा समुद्र धियां असदग ग्रहात हितात्म पातम गृह मंदकोपम पनम गतो जद हरिमाश्रय। इसका अर्थ यह है, आप असुरों में श्रेष्ठ है असुर, मैंने क्या सब साधु मैंने सत्य समझाया, अच्छी समझा, ये आपको बतला रहा है, ये संसार कारागार है माया का, इसमें सुख शांति नहीं है। संसारी लोग अर्थ के कमाने में विषयों को संग्रह करने में ऐसे लग जाते हैं कि मृत्यु के मुख में अपना एक सब पैर को दिया रहा, कैसे कैसे बिजनेस करते हैं, कोई इब्राहिम दाऊद या दाऊद इब्राहिम कोई है यहां से बंबई से संबंधित, और उनके चेले चेले चपाटी है ना, कितने पकड़ लिए गए, कितने मारे गए, कितने को गोली कर दिया, अब बेपरवाह होकर के चलते हैं तीन ये दो हाथ में चार ये लेकर के रिवॉल्वर डेस्परेट होकर के मरेंगे तो ऐसे मरेंगे हम लूट लेकर के आएंगे भंडार, मरना तो है ये बेपरवाह होकर के चलते हैं, नहीं तो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे विषय में लगे हुए हैं जिनको कुछ कुछ संसार का पता नहीं, बस विषयों को छल बल से जैसे तैसे मैया को भी गोली मारो, पिता को भी मारो, जैसे तैसे बाई हुक एंड क्रोक ये हमको लेना है, ये लोग पशु से भी अगर। तो इसी को प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो लोग संसार में आए हुए हितात्म पातम गृहम अंधकूपम, यह गुरु रूपी अंधकूप है जो विषयों में फंसे हुए हैं, आज जिस गृह में ठाकुर जी की पूजा होते हुए आत्मज्ञान है और ऊपर जाने की चेष्टा हो रही है भगवान की भक्ति से, वो गृहस्थ आश्रम। अधिकांश लोगों का गृहस्थ आश्रम नहीं है, क्या है गुरु रूपी अंधकूप। कैसा अंधकूप, एक आदमी जा रहा था भरने जंगल में, जा रहा था मधु के लिए, मधु जाते हैं ना जंगल में और वहां से मधु ले आते। जब वो कुछ जंगल में प्रवेश किया तो देखा एक बाघ उसके तरफ में छपट आ रहा, गर्जन करता एकदम आक्रमण करने की तैयार है। अब मैं क्या करूं, बड़े बड़े मोटे पेड़ है उस पर तो चढ़ नहीं सकता, अब कैसे प्राण बचाऊं। इधर देखा जैसे एक कुआं है, कुएं पानी नहीं है, कुआं पुराना हो गया है, जल सूख गया है, और उसमें कुछ पीपल के पेड़ उगाए। बस उसने क्या किया, देखा मैं इधर उधर, बस उन डालियों को दो डालियों को पकड़ा और वो झूल गया, कुएं में चला गया, किंतु नीचे डाल को नहीं छोड़ा, नीचे नहीं गया। उसने देखा नीचे भयंकर सर्प फोंस फोंस कर रहा है, काला एकदम, यदि नीचे थोड़ा सा चला गया ना तो बस काटेगा मरेगा, और ऊपर में यदि गया तो
बाघ निकल जाएगा,
बाघ अभी निकल जाएगा, इसलिए बीच में ही रहा, बुद्धिमानी किया। किंतु देखता है क्या कि कुएं से दो चूहे निकले, एक काला एक सफेद, और जिन डालों को दोनों को पकड़ा हुआ है उसको कुतरने लगे, एक को काला और एक सफेद, यदि नीचे नहीं उतरता है तो भी मरण जरूरी, ऊपर आता है तो भी मरया।